ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, मानव तस्करी से संबंधित कानूनी ढांचे को सुदृढ़ करती भारतीय न्याय संहिता 2023 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व पुलिस महानिदेशक अतुल कुमार माथुर, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना।
जैसा कि अतुल जी, आज का कार्यक्रम है मानव तस्करी के बारे में और जो हमारी न्याय संहिता 2023 की है, जो अब लागू होने जा रही है, उसमें इस विषय को लेकर क्या प्रावधान है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो तीन न्याय संहिता है, भारतीय साक्ष्य संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें जो सबसे प्रमुख है भारतीय न्याय संहिता, जिसमें इस बात के प्रावधान किए गए हैं कि जो मानव तस्करी है उसको किस तरह से रोका जाए। अतुल कुमार जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं को इस बात की जानकारी दें कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग या जो मानव तस्करी है, ये वास्तव में क्या है, किस तरह की समस्या है और हमारे संविधान में इस पूरी बात को किस तरह से रेखांकित किया गया है।
भारत में अभी तक 1 जुलाई तक हम इंडियन पिनल कोड या भारतीय दंड संहिता का पालन कर रहे हैं, वही अभी फोर्स है। लेकिन 1 जुलाई से, जैसे कि घोषणा की गई है, भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता का शुभारंभ हो जाएगा, उसका वो फोर्स में आ जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं अपने श्रोताओं को ये बताने की कोशिश करता हूँ कि इस नाम में जो परिवर्तन हुआ है उसका पूरी कानून प्रक्रिया पे बहुत असर पड़ रहा है और वो एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। सबसे पहले ये है कि हम पहले भारतीय दंड संहिता बोलते थे और उसमें भारतीय और संहिता शब्द तो अभी भी कॉमन है, लेकिन जो दंड शब्द था उसका एक अपना कोनोटेशन था, उसका एक अपना मतलब था। और अब जो हम कह रहे हैं भारतीय न्याय संहिता, तो इसका अंदर जो न्याय शब्द है इसका एक बहुत ही प्रभावशाली अंतर आया है। जब हम दंड की बात करते हैं तो हम आरोपी या अभियुक्त और उसकी गलती या उसके जो गुनाह है और उसको कैसे दंडित किया जाए, इस पे हमारा ध्यान रहता था। लेकिन इसमें पीड़ित या विक्टिम का कोई जिक्र नहीं होता है। इसमें हमारे फोकस पॉइंट में, हमारे ध्यान में जो पीड़ित व्यक्ति है उसका कोई विचार नहीं होता है। अब जो न्याय संहिता आई है उसमें न्याय शब्द का एक बहुत ही विस्तृत रूप है, जिसमें दंड के अलावा पीड़ित को भी हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा। उसकी संवेदनाएं, उसके साथ क्या हुआ है, उसको कैसे पुनर्स्थापित किया जाए, कैसे उसको कंपनसेट किया जाए, ये सब बातें अब पीड़ित को भी इस केंद्र में रखकर हमारा कानून करेगा। इसी विचारधारा को लेकर के हमारे इस नए कानून में बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। और सबसे पहले तो ये है कि महिलाओं और बच्चों को लेकर के जो कानून में प्रावधान हुआ करते थे भारतीय दंड संहिता में, वो हर जगह बिखरे हुए थे, वो अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग धाराओं में कहीं ना कहीं इधर उधर मिलते थे। हमारे भारत सरकार ने नए कानून में इसका एक अलग से अध्याय बना दिया है और वो चैप्टर जो है उसी के अलावा एक चैप्टर बना है जिसमें ह्यूमन बॉडी और लाइफ, शरीर से और जीवन से जुड़े हुए जो अपराध हैं, उनका एक अलग चैप्टर बना दिया गया है। तो हम जिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर रहे हैं वो हमारे शरीर के और जीवन के जो अध्याय हैं उसमें एक धारा है, धारा 143, उसमें ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन या व्यक्ति का दुर्व्यापार वो अपराध बनाया गया है।
फिर मधुर साहब पूछना चाहूंगा, जैसे कि हमारे पहले बहुत सारे कानून थे, जैसे कि ITPA कानून था, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट था 1956 का, फिर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट भी आया, तो ये सारी चीजें जो बच्चों से संबंधित था, और जो पॉक्सो की बहुत ज्यादा बात होती है, जैसे अभी आपने बच्चों से संबंधित जिक्र किया, जहां पर बच्चों के और उनके सेक्सुअल ऑफेंसेज हैं उनके संरक्षण से संबंधित कानून था, तो क्या ये सारे कानून अब जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें समाहित हो गए हैं कि इनमें से किसी का अस्तित्व अभी बचा हुआ है?
भारत में जो कानून प्रक्रिया है उसमें दो तरह के कानून होते हैं, एक सामान्य क्रिमिनल लॉ है या जनरल क्रिमिनल लॉ है, एक स्पेशल क्रिमिनल लॉ है। जिन कानूनों का आप जिक्र कर रहे हैं वो स्पेशल लॉज हैं और स्पेशल लॉज हमेशा प्रिवेल करते हैं सामान्य कानून पे। हमने जो भारतीय न्याय संहिता में जो हमारा सामान्य आपराधिक कानून है उसके अंदर इसका समावेश किया है, क्योंकि जो कानून स्पेशल लॉ में बने हैं उनका स्कोप बहुत लिमिटेड है। जैसे इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट जो है उसमें सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को लेकर के ही ज्यादा करके अपराध बना गया है, जबकि जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, ट्रैफिकिंग होता है, वो तो अन्य बहुत कारणों से होता है, तो उसका एक विस्तृत रूप है। और जो अपराध उसमें शामिल नहीं होते या जो उसके अंदर आएंगे, उसके दायरे में नहीं आएंगे, वो हम भारतीय न्याय संहिता के दायरे में लेकर के करेंगे। और एक बहुत ही अच्छी इलैबोरेटेड बड़ी विस्तृत परिभाषा इसमें दी गई है कि व्यक्ति का दुर्व्यापार या ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन किसे कहते हैं, इसके लिए धारा 143 में बहुत विस्तृत रूप से दिया गया है। तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ श्रोताओं के लाभ के लिए कि ये इस धारा 143 का क्लॉज एक जो है वो कहता है कि जो कोई शोषण के प्रयोजन के लिए धमकियों का प्रयोग करके, बल या किसी और अन्य प्रकार के प्रपीड़न का प्रयोग करके, या अपहरण द्वारा, या कपट का प्रयोग करके, या प्रवंचना द्वारा, या शक्ति का दुरुपयोग करके, या उत्प्रेरणा द्वारा, जिसके अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति की जो भर्ती किए गए, परिवहनित, संश्रित, स्थानांतरित या ग्रहित व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है, संपत्ति प्राप्त करने के लिए भुगतान या फायदे देने या प्राप्त करने भी आता है, किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को भर्ती करता है, स्थानांतरित करता है या ग्रहित करता है, वह दुर्व्यापार का अपराध करता है। तो इसमें जो पूरा दल होता है, जो उनको ले जाता है, जो उनको रखता है, जो उनके साथ आगे उनका कन्फाइनमेंट करता है, उनको बंधक रखता है, उनको प्राप्त करता है, वो सब भी इसी धारा के अंदर आ जाएंगे। अगर इस तरह के प्रयोजन के लिए ऐसी कार्यवाही जैसी कि इसमें दी गई है, इन माध्यमों से वो व्यक्ति को ले जाते हैं, उसको मजबूर करते हैं, तो वो व्यक्ति का दुर्व्यापार करते हैं। इस सेक्शन में, इस धारा में 7 क्लॉज हैं और 7 में अलग अलग बात के लिए अलग अलग जो दंड है उसको दिया गया है। इसमें शोषण के शब्द को जो है परिभाषित किया गया, एक्सप्लेन किया गया है, उसको स्पष्टीकरण दिया गया है। शोषण के अंतर्गत शारीरिक शोषण का कोई भी कृत्य या किसी प्रकार का लैंगिक शोषण, दासता आदि सेविता के समान व्यवहार, भिक्षावृत्ति और अंगों का बलात् अपहरण, हमारे जो ऑर्गन का भी ट्रेड होता है, उसके लिए भी इसमें अपराध को शोषण की श्रेणी में माना गया है। और दुर्व्यापार के अपराध में अवधारण में पीड़ित की सहमति महत्वपूर्ण नहीं है। ये कहकर वो नहीं छूट सकता कि जिस व्यक्ति का पीड़ित है उसने अपनी सहमति इस काम के लिए दे रखी है, उसकी सहमति को यहाँ पे मान्यता है ही नहीं, सहमति कभी भी इशू में नहीं रहेगी, इसका मुद्दा ही नहीं रहेगा।
जी, इसमें जैसा आपने मोहतर साहब जिक्र किया ना ह्यूमन ऑर्गन्स का, इसके लिए पहले से भी एक एक्ट है हमारे पास, जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट है, जो 1994 का है। तो अगर इस तरह का कोई भी केस होता है ट्रांसप्लांटेशन का, जहां गलत तरीके से ह्यूमन ऑर्गन्स को प्राप्त करके और उनको वो किया जाता है, तो इसमें ये भारतीय न्याय संहिता और ये जो ह्यूमन ऑर्गन एक्ट है दोनों ही लागू होंगे, इसका मतलब?
हाँ, ये एक साधारण नियम है, जो विशेष कानून होते हैं उनके अपने स्कोप होते हैं, उनके अपने दायरे होते हैं, और कोई चीज अगर उनके दायरे में नहीं आ रही है तो उसके लिए कई बार अपराधी छूट जाते हैं, क्योंकि वो उस दायरे से बाहर निकल आते हैं। अब हमारी जो ये दंड संहिता बनी है या न्याय संहिता बनी है, इसमें उसको कवर करके उस शामिल कर लिया गया है। अब उसके पास कोई माध्यम नहीं है कि वो छूट जाए, क्योंकि अगर वो किसी स्पेशल कानून के अंतर्गत नहीं आ रहा है किसी वजह से, तो वो इस सामान्य कानून में तो हमेशा आ ही जाएगा और वो अपराधी कहलाएगा इन परिभाषाओं से।
जी, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने जिक्र किया बच्चों से संबंधित अपराध, और इस बारे में हम देखें तो सभी जगह, इंडिया में भी, भारत में भी और भारत से बाहर भी, जो चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन है, जो बाल वेश्यावृत्ति, ये बहुत ही गंभीर समस्या है, तो उसको लेके क्या कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं भारतीय न्याय संहिता में?
महिलाओं और बच्चों के ऊपर केंद्रित है और उसमें कुछ धाराएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ।
जी,
इसमें बालक का उपानन यानी प्रोक्योरेशन ऑफ चाइल्ड है, हायरिंग, एम्प्लॉइंग और एंगेजिंग ए चाइल्ड, अपराध को कारित करने के लिए बालक को भाड़े पे लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने अपराध के लिए बच्चों को या तो भाड़े पे ले लेते हैं, माँ बाप को पैसे दे देते हैं या जो भी उनके संरक्षक होते हैं उनसे ले लेते हैं, वो गरीबी में या किसी दासता की वजह से या किसी त्रासदी की वजह से पीड़ित होते हैं, वो इस तरह के जो उनके प्रस्ताव आते हैं उनको मान लेते हैं या उनको एम्प्लॉय कर लेते हैं, वो कहते हैं हम तुमको पैसे देंगे और वो उनसे फिर अपराध कराते हैं या नियुक्त कर लेते हैं, नौकरी दे देते हैं। तो ऐसे लोगों को धारा 96 में पनिशमेंट का प्रयोजन है। और इसी तरह से प्रोक्योरेशन ऑफ चाइल्ड, जो कोई बालक को अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुप्त करने के आशय से या तद द्वारा विवश या विलुप्त किया जाएगा या ये जानते हुए कि वे ऐसे बालक को किसी स्थान पर ले जाने का कोई कार्य कोई भी साधन द्वारा उत्प्रेरित करेगा, वो कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जा सकता है और वो जुर्माने के लिए भी लाए। तो एक अलग धारा इसमें बन गई है। इसके अलावा धारा 97 10 वर्ष से कम आयु के बालक के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका अपहरण करना या व्यपहरण करना, किडनैपिंग या एबडक्शन फ्रॉम ए चाइल्ड, उसके अलावा वैश्यवृत्ति आदि के प्रयोजन से बच्चों को बेचना, जैसे आपने अभी प्रश्न किया था, उसके लिए धारा 98 और उसमें भी बहुत पनिशमेंट इसमें दिया गया है, कठोर पनिशमेंट है, 10 साल तक की सजा और जुर्माना है। और बच्चों को प्रोस्टिट्यूशन के लिए खरीदना, बाइंग चाइल्ड फॉर पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, वैश्यवृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए बच्चों को खरीदने के लिए धारा 99 है। और ये धारा भी जो 7 वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए, पनिशमेंट जो है वो मिनिमम 7, कम से कम 7 वर्ष का होगा, इसमें मैंडेटरी मिनिमम पनिशमेंट दे रखा है और 14 वर्ष तक अवधि तक का इसमें पनिशमेंट दिया जा सकता है, दंड दिया जा सकता है और उसमें जुर्माना भी होगा। इसके अलावा फिर जो मानव शरीर पे प्रभाव डालने वाले अपराधों की गिनती में भी इसको लिया गया है। मैं यहाँ एक बात आपको बताना चाहूंगा प्रारंभ में ही कि भारतीय न्याय संहिता ने, जो आप दंड की जगह न्याय शब्द हम प्रयोग करते हैं, इसको इतनी गंभीरता से लिया है कि एक जो नया अपराध इसमें जोड़ा गया है धारा 111 में, वो है संगठित अपराध और ऑर्गेनाइज क्राइम। और ये जो अपराध हैं सारे, ये उस संगठित अपराध की श्रेणी में भी आते हैं। ये जितने भी हम अभी जिनके ऊपर हमारी चर्चा चल रही है, इसमें संगठित अपराध में कोई भी संगठित अपराध, किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट के और एकल रूप से या संयुक्त रूप से सामान्य मति से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा कोई सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप, जिसमें व्यापरण यानी किडनैपिंग, डकैती, यान चोरी, उद्यापन, भूमि हत्याना, संविदा पर हत्या करना, वार्तिक अपराध, साइबर अपराध, व्यक्तियां औषधियां हथियार आदि का दुर्व्यापार यानी मानव तस्करी, वैश्यवृत्ति और फिरौती के लिए मानव को लेना और अंगों का लेने के लिए उसके साथ कोई अपराध करता है तो वो
जी जी। माधव साहब, मैं एक चीज और इससे संबंध में पूछना चाहूंगा। अभी हाल में ही दक्षिण के एक राज्य में इस तरह की घटना हुई कि वो गरीब माँ बाप से बच्चों को ले लेते थे, न्यू बॉर्न चाइल्ड को, नवजात बच्चों को, और को गोद दे देते थे उन लोगों को, उन माता पिता को जिनके बच्चे नहीं होते थे। तो इस तरह का जो अपराध है कि आप कोई कानूनी प्रक्रिया को पूरी न करके बच्चों को प्रक्योर कर लें, बच्चों को ले लें और फिर किन्हीं और लोगों को बच्चों को दे दे जो उनको पाल ले अपने बच्चों की तरह, तो इससे संबंधित भी कुछ व्यवस्थाएं हैं नए कानून में?
जी हाँ, ये जो धारा है धारा 143 जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, पर्सन ट्रैफिकिंग को परिभाषित किया है, व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया है, ये चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। और अगर जिस उद्देश्य से, जो उद्देश्य है वो अगर आपराधिक है और वो स्पष्ट रूप से दिखता है कि आपराधिक तरीके से किया गया है, ये कोई मानव सेवा के तौर पर तो कर नहीं रहे। ये लोग दोनों साइड को, दोनों पार्टीज को, दोनों व्यक्तियों को, जो देने वाला है बच्चे को देने वाला है और जो बच्चे को प्राप्त करने वाला है, वो दोनों को बेवकूफ बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं, फ्रॉड करते हैं, उनको मिसलीड करते हैं और अपना फायदा कमाते हैं। इसमें इनकी कोई मानव सेवा का कोई उद्देश्य नहीं होता है और ये एक आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं
जी।
और इस तरह के व्यापार को ही डिस्करेज करने के लिए, इसको नहीं बढ़ावा मिले उसको रोकने के लिए, इसके अंदर जो धारा 6 है उसमें सारी तरह की बातें हैं कि किस तरह से आप इंड्यूसमेंट करते हो या रिसीविंग पेमेंट है, वो सब इसमें शामिल किया।
जी जी माधव साहब, अंत में मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि हम देखते हैं कि एक देश से दूसरे देश में बहुत बड़े पैमाने पर मानव तस्करी होती है, तो इसको लेके भी कुछ विशेष प्रावधान है इस कानून में?
जी हाँ, इसको लेकर के पहले सिर्फ गर्ल्स के लिए एक कानून था, अब जो हमारा नया न्याय संहिता है ये बहुत सारे मामलों में जेंडर न्यूट्रल हो गया है।
आज हम चर्चा कर रहे थे मानव तस्करी से संबंधित कानूनी ढांचे को लेकर जो भारतीय न्याय संहिता में प्रावधान है, और इस विषय पर बहुत ही बहुमूल्य जानकारी देने के लिए अतुल कुमार माथुर जी हमारे साथ थे। माथुर जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे मानव तस्करी से संबंधित कानूनी ढांचे को सुदृढ़ करती भारतीय न्याय संहिता 2023 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व पुलिस महानिदेशक अतुल कुमार माथुर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नम्बर है 9289094044।